संजना की कोशिशें। वहीं उस समय रौनक का मन पूरी तरह से बेचैन था, लेकिन फिर भी वो नानी माँ का दिल रखने के लिए बेमन से खाना खाने लगी थी। अब आगे नानी माँ ने उसकी मायूसी भांप ली थी और वो उससे सवाल भी करना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद बेचारी पहली पहली बार माँ बनी है तो शायद इसीलिए ज्यादा घबराई गई होगी। सोच रही होगी इतना छोटा बच्चा कैसे संभाल पाएंगे। ये सोचते हुए नानी माँ ने रौनक का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे थपथपाकर रौनक को तसल्ली दी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी नानी माँ जिंदा है तब तक तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें शायद बच्चे होने के बाद एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है कि तुम किस तरह से इस बच्चे को पालोगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। मैं भी तो गोरी बिटिया की तरह तुम्हारी नानी माँ हूँ ना। ये बोलकर नानी माँ ने बड़े ही प्यार से रौनक के सर को सहलाया और उसे दिलासा दिया। फिर उन्होंने अपनी नज़रें मारिया की ओर घुमाई और हल्की स्माइल करते हुए बोली, बेटा ये मत समझना कि ये बातें मैंने सिर्फ रौनक बिटिया के लिए कही हैं, ये तुम्हारे लिए भी हैं। आप लोग अच्छे से यहाँ बस कुछ दिन गुजार लो, उसके बाद मैं अपने आप ही आपके बच्चों को पाल लूँगी। आप दोनों को अपने बच्चों को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही नानी माँ ने इतने अपनेपन से ये बात कही तो ये सुनकर कहीं ना कहीं मारिया और रौनक की आँखें अपने आप छलक आईं और वो दोनों खुद को रोक नहीं पाईं और सीधा नानी माँ के गले से जा लगी और रो पड़ी। तब नानी माँ ने तुरंत ही रौनक के सिर पर हल्की सी चपट लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू, ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं रोना है। अगर इस तरह से इन हालात में रोगी तो तुम्हारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। तुम नहीं जानती, हमारे बड़े कहते थे कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसे पैदा करने वाली माँ का भी दूसरा जन्म होता है, तो जितनी देखभाल बच्चों की करनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा माँ की भी करनी चाहिए। तुम तो जानती ही होगी इस बात को। यहाँ वहाँ की बातें बोलकर नानी माँ ने रौनक को अच्छी तरह समझा बुझाकर चुप करा दिया था, लेकिन रौनक ने मन ही मन ठान लिया था कि बस 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जैसे ही उसका शरीर थोड़ा ताकतवर हो जाएगा तो वैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाएगी। इसी सोच के साथ उसने आंखें मूंद ली थीं। वहीं दूसरी ओर आस्था जैसे ही कार में बैठी, अरमान आस्था को तिरछी नज़र से देख रहा था और साथ ही साथ उसे घूर भी रहा था। आज टाइगर उनके साथ नहीं आया था क्योंकि आस्था ने जानबूझकर टाइगर को घर पर ही रोक दिया था। जब से बच्चे घर पर आए थे टाइगर ने मारिया के साथ ठीक से वक्त नहीं बिताया था। हालांकि बेबी डिलीवर होने के बाद नानी माँ ने खुद मना किया था कि अभी किसी को ज़्यादा रौनक और मारिया से मिलने जुलने न दिया जाए, लेकिन आस्था ये बात समझती थी कि भले ही उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं थी मगर नई जिंदगी के आने के बाद इमोशनल सपोर्ट के लिए उनके पति का उसके आसपास रहना कितना ज़रूरी है। हालांकि आस्था को अभी तक आहान से बात करने का सही मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि जल्दी ही वो आहान से अकेले में बात करेगी और उसके मन की सारी बात पूछेगी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, आखिर उसको हो क्या गया है। वहीं आस्था को इतना चुप देखकर अरमान ने होंठ भींचे और भारी मन से सोचा, अगर ये लड़की इस वक्त उस अबीर के साथ लंच डेट पर होती तो उसके साथ कितनी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती, लेकिन मेरे साथ देखो किस तरह से मुँह लटकाकर बैठी हुई है। अरमान को ये सब सोचकर मन ही मन गुस्सा आ रहा था। फिर वो खुद से सवाल पूछने लगा, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर ये उस अबीर सिंह राठौड़ के साथ टाइम बिताना चाहती है तो मैंने उसे जाने क्यों नहीं दिया? आखिरकार मुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है? ये सोचते हुए अरमान ने मन ही मन खुद से शिकायत की। फिलहाल उसने खुद के इमोशंस को जैसे तैसे संभाला और कल रात जो कुछ उनके बीच हुआ था वो याद आते ही वो आस्था का गुर्राते हुए बोला, ए लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मत समझना कि मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ही ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इस तरह से इंटीमेट हुआ था, और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि किस तरह से तुम पहले मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। शायद उस वक्त भी तुमने मेरे साथ इसी तरह की कोई चाल चली होगी जैसे कल रात चली थी। अरमान के ये शब्द आस्था के कानों में जैसे पिघलते शीशे की तरह उतर गए। उसे लगा था कि अगर वो अरमान को थोड़ा चिढ़ाएगी, ताना मारेगी तो अरमान उल्टी सीधी हरकतें करेगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन अरमान उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देगा, ये बात तो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। आस्था को लगा जैसे अरमान के चलाए गए शब्दों के तीर उसे भी घायल करते जा रहे हैं। उसके गालों पर आंसू कब लुढ़क आए इसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। अचानक आस्था की आंखों में आंसू देखकर अरमान का दिल पिघला। अपना गुस्सा दबाते हुए उसने ठंडी आवाज़ में आस्था से कहा, अभी ऑफिस आने वाला है तो खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू का एक भी कतरा निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये बोलकर अरमान फट से खिड़की के बाहर देखने लगा। हालांकि आस्था भीतर ही भीतर बुरी तरह टूट चुकी थी। कार सिंघानिया एम्पायर पहुंच चुकी थी। आस्था ने अपने आंसू पोंछ लिए थे,
क्योंकि वो अरमान को जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो कितनी आहत और परेशान है, और अगर संजना ने उसे देख लिया तो वो इस बात का फायदा उठाकर उसे और तंग कर सकती थी। फिलहाल ये आंसू बहाने का वक्त नहीं था। अब जबकि आस्था को पता चल चुका था कि संजना राजवीर जिंदल से मिली हुई है, तो ये बात उसके लिए बहुत गंभीर थी। संजना और राजवीर का रहस्य आस्था को हर हाल में जानना था। फिलहाल आस्था ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज ऑफिस आने के पीछे उसका एक अलग ही मकसद था। जैसे ही वो संजना के सेक्रेटरी रूम के पास से गुजरी, उसने देखा कि संजना इस वक्त अपने लैपटॉप पर किसी को लगातार मैसेज कर रही थी। आस्था वहीं रुक गई और बिना दरवाजा खटखटाए सीधा संजना के केबिन में चली गई। संजना ने जैसे ही ये देखा कि आस्था उसके केबिन में घुस आई है, तो वो गुस्से से खड़ी हो गई और आस्था पर भड़क उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आस्था पर बरसते हुए संजना सर से लेकर पांव तक गुस्से में कांप रही थी। संजना की इरिटेट आवाज सुनकर आस्था को झुंझलाहट हुई। आस्था ने आईब्रो चढ़ाई, चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए सरकास्टिक जवाब दिया, मेरे ऑफिस में खड़ी होकर तुम मुझसे अपनी मालकिन से इस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक सेक्रेटरी हो और मैं सिंघानिया एम्पायर की मालकिन? संजना शॉक थी, क्योंकि आस्था को इस तरह की बात करने की आदत नहीं थी। आस्था के इस बिहेवियर ने संजना के गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी थी। उसकी आंखों में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। वो चुपचाप आस्था को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि आस्था संजना को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, क्योंकि संजना कुत्ते की वो दुम थी जो कितनी ही बार सीधी करने के बाद भी सीधी नहीं होने वाली थी। ये बात आस्था अच्छी तरह से जानती थी। संजना के दिल में नाराजगी अपने चरम पर जा चुकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए आस्था को तीखी नजरों से घूरते हुए कहा,
देखो मेरे सामने फालतू का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करना। और तुम्हें क्या लगता है कल रात मेरा प्लान बिगाड़कर तुम मुझसे जीत जाओगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है आस्था। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा सारा सच पता चल चुका है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अरमान सिंघानिया मेरा हर हाल में होकर रहेगा और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। संजना के मुंह से ये बात सुनते ही आस्था की आंखें गुस्से से सुलग गई थीं और अगले ही पल तुरंत उसने संजना का मुंह भींचते हुए कहा, लगता है मेरा कल रात का चांठा तुम्हें याद नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। इस पर संजना की आंखें जलन और गुस्से से भर गईं और वो एकदम चिल्लाई, जस्ट शट अप। ये बोलकर उसने जैसे ही आस्था पर हाथ उठाने की कोशिश की, आस्था ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और कुछ उखड़े अंदाज में बोली, अपनी औकात में रहना। ये बोलकर देर ना करते हुए आस्था तेज कदमों के साथ अपने केबिन में चली गई थी। वहीं अरमान जो अपनी मीटिंग सारी डिटेल्स और चेक कर रहा था, और तभी उसे उसके ऑफिशियल जीमेल पर एक मेल मिला कि आज उसका अपॉइंटमेंट मिस्टर अविनाश रघुवंशी से फिक्स हो गया है। ये पढ़कर उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे एक और नोट मिला था जिसमें लिखा था कि अगर आप अपनी बीवी का असली चेहरा देखना चाहते हैं तो उसे भी अविनाश रघुवंशी के सामने लेकर आइए, जिस तरह से उसने बिना परमिशन के जन्माष्टमी का त्यौहार रघुवंशी मैंशन में मनाया था, उसकी सज़ा मिस्टर अविनाश रघुवंशी खुद उसे देंगे, क्योंकि आस्था ने उनकी इजाज़त के बिना उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। ये पढ़कर अरमान का माथा ठनका और वो इस बारे में गहराई से विचार करने लगा, अगर वाकई में इस लड़की ने ऐसा कुछ किया है तो आज इसका सच सबके सामने खुद बखुद आ जाएगा। और दादाजी जो हमेशा उसकी साइड लेते रहते हैं और कहते रहते हैं अच्छी लड़कियां ये वो, उनको भी आस्था की असलियत पता चल जाएगी। उस दिन बड़े गुमान के साथ कह रहे थे कि आस्था बिटिया ने सारा इंतजाम रघुवंशी मैंशन में कर दिया है, किस बेसिस पर किया है इसका पता आज चल जाएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिरकार रघुवंशी के साथ इस लड़की की डील हुई भी है या नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस मामली सी गांव की गवार लड़की का कॉन्टैक्ट ऑस्ट्रेलिया में अविनाश रघुवंशी से होगा। कहीं ना कहीं अरमान अपनी सारी शक की सुइयों को जोड़ रहा था। उसने तुरंत संजना को एक मैसेज भेजा और कहा कि रघुवंशी साहब को मेल करो और उनसे कहूं कि वो हमसे मिलने डायरेक्ट रघुवंशी विला में आ जाए, यानी सिंघानिया मैंशन के ठीक सामने। अरमान ने मन ही मन ठान लिया था कि आस्था की सच्चाई वो अब पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगा, इसलिए उसने अविनाश रघुवंशी को कहीं और नहीं बल्कि मीटिंग करने के लिए उनके ही विला में बुलवाया था। इस पर संजना के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। उस समय उसके मन में यही बात चल रही थी, अब आस्था की खैर नहीं, अब मज़ा आएगा। उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। ये सोचते हुए संजना के चेहरे पर नफरत ही नफरत नजर आ रही थी। दूसरी ओर अविनाश इस वक्त पूरी तरह हैरान था। उसके साथ एंजल भी इंडिया आ रही थी, क्योंकि वो अंश और आस्था से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, और साथ ही वो आस्था को एक सरप्राइज भी देना चाहती थी, इसलिए वे लोग अब इंडिया आ रहे थे। वहीं अविनाश को अरमान की सेक्रेटरी से जैसे ही जीमेल मिला तो वो एकदम से चौंक गया और एंजल से बोला, आखिर ये अरमान को हुआ क्या है? वो मुझे रघुवंशी मैंशन में मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? आखिर वहां चल क्या रहा है? और आस्था भी पहले जैसे ठीक से बात नहीं करती, बस हाय हेलो करके हाल पूछकर कॉल रख देती है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर एंजल के एक्सप्रेशन बदल गए। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर बोली, ओफ हो, जब हम इंडिया पहुंच जाएंगे तब आस्था से मिलकर सारी बातें पूछ लेना, ठीक है?
फिलहाल एंजल ये सोचकर भी खुश थी कि वो सबसे मिलने वाली है, क्योंकि नानी माँ की एंजल और अविनाश से हर रोज बातचीत हुआ करती थी, तो नानी माँ ने उन्हें फोन पर बता दिया था कि रौनक और मारिया को भी बच्चे हुए हैं। ये जानकर अविनाश और एंजल काफी खुश हुए थे और उन दोनों ने मिलकर पूरी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे थे। फिलहाल अरमान रहस्यमयी तरीके से आस्था को घूरते हुए सोच रहा था, अब मैं इस लड़की की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाऊंगा कि इसने कैसी कैसी घटिया हरकतें की हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित दोनों एक साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तभी रश्मि एकदम से सुमित के पास आई और उसे घूरने लगी। आकाश ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है रश्मि, तुम इस तरह सुमित को क्यों देख रही हो? तभी अचानक रश्मि को तेज गुस्सा आया और उसने तुरंत सुमित का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राधिका को तकलीफ देकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुश रहोगे? आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इस पर आकाश और सुमित का चेहरा हल्का सा बदला। दोनों हैरान थे कि आखिर रश्मि रो क्यों रही है। फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले दोनों बच्चों को सुकून से सोते देख रश्मि अपने कमरे में वापस जा रही थी, तभी उसे सुमित के कमरे से राधिका के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही रश्मि अंदर गई वैसे ही उसने देखा कि राधिका के हाथ में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे जो अंश और बाकी बच्चों के थे, जिसे देखकर राधिका फूट फूट कर रो रही थी। रश्मि ने राधिका की सिचुएशन देखी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है राधिका, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आखिर क्या कारण है राधिका के रोने का? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।